परमपिता परमात्मा एक अद्भुत शिल्पी है जो अपने ही निर्देशन में भविष्य सतयुगी संसार के लिए विभिन्न चैतन्य मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। ऐसी ही एक मधुर स्वर कुशाग्र तार्किक बुद्धि की धनी मूर्ति हम सबके समक्ष उपस्थित हैं, आदरणीय शीलू दीदी जी, जिनकी वाणी में सचमुच सरस्वती का निवास है। आपका हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर उस समय धन्य हो गई जब आपकी मधुर किलकारी सन 1948 में मुंबई में गूंजी। आध्यात्मिक रुचि में गहरी रुचि रखने की हमेशा प्रकृति रही और मात्र 12 वर्ष की आयु में ही परमात्मा को अपना बनाने का, अपना हाथ उनके हाथ में देने का दृढ़ निश्चय किया और लौकिक शिक्षा पूरी करके 21 वर्ष की आयु में जीवन सफल करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। तब से लेकर लगातार देश विदेश आपकी सेवा को सराहा गया। वर्तमान में आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी एक विशेष खूबी है कि आप कई भाषाओं में धारा प्रवाह अपना वक्तव्य रख सकते हैं। आज हम आपकी अनमोल वाणी की झनकार से लाभान्वित होंगे। आज का विषय है लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा चढ़ती कला। आदरणीय शीलू दीदी जी,
ओम शांति। बाबा के हम सभी प्यारे बच्चे हैं और बाबा हम बच्चों में बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम बच्चे कहाँ तक बाबा की उम्मीदों को पूरा करते हैं, हम ये अपने अंदर झांक कर देखें। हमारी भी यही चाहना तो रहती ही है कि हम बाबा की इच्छाओं को पूर्ण करें। क्या है बाबा की इच्छाएं? बच्चे पवित्र बने, योगी बने, ये तो सबसे पहली इच्छा है। इसलिए जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, बाबा ने जो भी उस समय बच्चे समर्पित हुए, सबसे पहली प्रतिज्ञा यही कराई, पवित्र और योगी बनने की। तो वो इच्छा तो उस समय बच्चों ने पूरी की और सब ने अपना जीवन पवित्र और योगी बनाया। फिर बाबा ने सबके प्रति यही इच्छा व्यक्त की कि बच्चे अब विश्व को संदेश देना है। तो जो उस समय 14 साल भट्ठी में थे, अपने आप को तपाया, पवित्र और योगी बने, उस छाप के आधार से बाबा ने कहा कि अब सबकी सेवा करो, विश्व में जाओ और सेवा करो, सबको बाप का पैगाम दो, सबको पवित्र और योगी बनने की प्रेरणा दो। बाप आया है, भगवान आया है हम सबको पावन योगी बनाने, वो सबको बताओ। तो बच्चों ने वो भी बाबा की इच्छा लगभग पूरी की है और आज हम देख रहे हैं कि 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं और लाखों बच्चे बाप के बन चुके हैं और भी सेवाएं करते जा रहे हैं, सेवा केंद्र खोलते जा रहे हैं, गांव-गांव में सेवाएं कर रहे हैं, अलग अलग रूपों से सेवा कर रहे हैं, ताकि जो बाबा की इच्छा है कि कोई एक आत्मा भी वंचित न रह जाए, तो उस इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए बच्चे अग्रसर हैं। लेकिन बाबा की तो बहुत इच्छाएं हैं हमारे में, अब इसके बाद की इच्छा जो हम वर्तमान की मुरलियों में देखते हैं वो है, बच्चे तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें फरिश्ता बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें विश्व महाराजन बनना है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अब ये बाबा की और इच्छाएं हैं। उस समय यज्ञ की जब शुरुआत हुई तो ये पता नहीं था कि ये सब भी कुछ करना होगा, बस इतना ही था, विनाश का साक्षात्कार हुआ, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ और बस यही कहा गया कि अब ये कलयुगी दुनिया जल्दी विनाश होगी और सतयुगी दुनिया आएंगी और हम सब उस दुनिया में चलेंगे, बस इतना ही पता था। और बाबा को ये साक्षात्कार हुआ कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, और कैसे अपने आप बाबा के बच्चे आते गए, समर्पित होते गए, और उसके लिए उस नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र योगी बनना है तो बन गए। ये उस समय पता नहीं था कि हम पवित्र योगी तो बन रहे हैं, बस यही इतना ही करना है, इसके आगे भी कुछ करना है ये पता नहीं था। लेकिन जब भारत में आए और बाबा ने एक एक को सेवा स्थानों पर भेजा, तो उस समय ये पता नहीं था क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस बाबा ने कहा है कि जो आपने पाया है वो दूसरों को देना है, बस। और चल पड़े जैसे घोड़े चल पड़े। लगाम तो बाबा के हाथ में ही थी और जिन जिन्होंने 14 साल तपस्या की वो चल पड़े भगवान का संदेश दुनिया में देने के लिए। फिर सोचा शायद अभी यही करना है, लेकिन बाबा ने तो बहुत लक्ष्य दे दिए कि अब तुमको संपूर्ण बनना है, घर चलने के लिए संपूर्ण बनना होगा, अगर संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। बाप की लाज रखो, बाप समान बनो, नहीं तो बाप का नाम बदनाम करोगे। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनो, सन शोज फादर करो, इतने ऊंचे पिता के बच्चे बने हो तो उस पिता का शो करो। और वो शो कैसे कर सकते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, बच्चा बाप का शो करता है। इसलिए गाते ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो रचना रचयिता का शो करता है, बताता है कि मेरा रचयिता कैसा है जिसने मुझे ऐसे रचा है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रख करके बच्चे दौड़े उड़े, लेकिन फिर अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, बस औरों की सेवा औरों की सेवा, जी जान से सेवा सेवा सेवा, इसी लगन में रहे। फिर बाबा ने कहा कि औरों की सेवा भी फलीभूत तब होगी जब पहले खुद की सेवा करोगे। खुद में शक्ति नहीं होगी, आप दूसरों को शक्ति कैसे देंगे? खुद में नहीं होगा तो औरों को कैसे दान कर सकेंगे? इसीलिए बैलेंस रखो, जितना दूसरों के लिए है उतना खुद के लिए भी है, नहीं तो नाम बदनाम करोगे। तो फिर बच्चे थोड़ा संभल गए कि हमको अपने पर भी ध्यान देना है। इसी को कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना। आज भी हम दूसरों को बताते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे देखते हैं हमारे अंदर कि इनको तो क्रोध भी है, इनको तो ईर्ष्या भी है, इनके अंदर तो आवेश भी है, ये भी है ये भी है। इनको भगवान पढ़ाते हैं पर ये तो इसके काबिल भी नहीं है, इनको क्या भगवान पढ़ाते होंगे? तो फिर बाबा का नाम बदनाम होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं औरों की सेवा के साथ साथ स्व की सेवा जरूरी है, और उस लक्ष्य में क्या हमें करना है। ब्रह्मा बाप ने जो किया वो हमें करना है। ब्रह्मा बाप ने कैसे इतना जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया? क्योंकि बाबा के आगे बहुत जबरदस्त लक्ष्य था। मैं ही श्री कृष्ण बनूंगा, इतना जबरदस्त लक्ष्य था ये। जब भी बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देखते थे इतनी खुशी होती थी बाबा को। कई बार मुरली में आता है कि बाबा तो खगिया मारते थे, ये कंधाएं ऐसे हिलाते थे, हिस्ट्री हॉल में बैठकर गद्दी पर बैठकर के सामने लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण ये सारे ट्रांसलेट होते थे, तो बाबा उनको देख करके इतनी खुशी प्रकट करते थे, मैं ये बन रहा हूँ। इतने नशे से कहते थे, सदा उनकी नजरों में यही लक्ष्य था। और फिर बाबा कहते थे देखो बच्चे, इनकी दुनिया में जाने के लिए इन जैसा बनना पड़ेगा। बाबा मिसाल देते थे कि मीराबाई को तो साक्षात्कार हुए श्री कृष्ण के, वैकुंठ के, उनके साथ रास भी करती थी श्री कृष्ण के साथ, हर वक्त जैसे उसके साथ ही है यही अनुभव करती थी, लेकिन फिर भी वो भक्त माला में नंबर वन थी। ऐसे नहीं कि सचमुच कोई वैकुंठ में गई। श्री कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तो केवल अभी संगम पर ही ये पुरुषार्थ बाबा कराते, ईश्वर कराते, भगवान कराते हैं, इसलिए भक्त माला में नंबर वन चली गई। तो श्री कृष्ण के साथ अपने आप को देखना ये तो भक्ति का भी स्वरूप है, लेकिन मैं श्री कृष्ण के समान बनूं ये बुद्धि में नहीं था। पर राधे तो कृष्ण के साथ थी, हर वक्त उनके साथ थी। पहले बाबा कहते हैं कि वो अलग राज्य की थी, अलग राज्य का था, स्वयंवर हुआ तब एक साथ हुए, लेकिन अवश्य कहां तो मिले होंगे जरूर, और पहली नजर में ही एक दो को स्वीकार कर भी लिया होगा। ऐसे थोड़ी कि माँ बाप नहीं कराया होगा, जरूर कहां तो मिले होंगे, लेकिन उनके समान थी। उनके समान थी, इसीलिए उनके साथ स्वयंवर हुआ। और अभी बाबा कहते हैं कि समान पहले बनना पड़ेगा, उसके पहले घर चलना पड़ेगा। मीराबाई को ये थोड़ी संकल्प था कि पता था कि घर जाना होगा, कंप्लीट पावन बनना होगा, उन जैसा बनना होगा, फिर उनके साथ हम वैकुंठ में सचमुच रास करेंगे। लेकिन अभी तो बाबा हमको कितना ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं, एक और मुक्ति का लक्ष्य है, दूसरी ओर जीवन मुक्ति का लक्ष्य है। मीराबाई को तो न मुक्ति का लक्ष्य था न जीवन मुक्ति का लक्ष्य था, बस मैं तो हूं ही श्री कृष्ण के साथ, उसी आनंद में रहती थी, पर वो भक्ति की स्थिति थी। उसमें वियोग भी था, योग नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को दासी समझने में ही खुशी प्रकट करती थी, बस दासी होके रहूं, साथ में रास रचाऊं, साथ में रहूं, ये नहीं बस दासी होके रहूं, राधे की तरह नहीं दासी की तरह रहूं। अब यहां तो बाबा कहते तुमको दासी थोड़ी बनना है, तुमको तो राजकुमार राजकुमारी बनना है, क्योंकि वही श्री कृष्ण के संग रास कर सकेंगे, दास दासियां थोड़ी कर सकेंगे श्री कृष्ण के साथ रास। इसलिए अगर उनके साथ रास रचाना है तो उनके जैसा बनना होगा, पर उसके पहले बाप समान बनना होगा, क्योंकि बाप के साथ घर जाना है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, साथ जाना है तो साथी बनना पड़ेगा, नहीं तो बराती बन करके चलेंगे। और साथ चलना है, साथी बनना है, तो समान बनना पड़ेगा। बिना समान बने न साथ चल सकेंगे न साथी बन सकेंगे। अगर कोई जोड़ी बनानी है और दोनों जोड़ी जो बनाए वो उनमें कोई समानता ही न हो तो वो जोड़ी अच्छी भी नहीं लगेगी। इसलिए समानता जरूर चाहिए। इसलिए जब भी किसी कुमार और कुमारी की सगाई भी करते हैं तो पहले देखते हैं योग है, क्योंकि कई बातों की समानता चाहिए, खाली हाइट कलर यही समानता नहीं, ग्रह भी मिलने चाहिए, संस्कार भी मिलने चाहिए, सब मिलना चाहिए। तो कुंडली को मिलाते हैं कि इसमें देखो जरा योग है, योग माना मिलन, योग माना मिलन के लिए समानता, तभी तो मिलन होगा, समानता ही नहीं तो मिलन कैसे होगा। इसलिए बाप समान जब तक नहीं बने हैं तब तक साथ और साथी नहीं, साथीपन का अनुभव नहीं होगा जो साथ जा सके। और साथ जाएं तब तो फिर ब्रह्मा बाप के साथी बन करके साथ में सतयुग में आए, नहीं तो बाद में आए तो क्या फायदा। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे उस लक्ष्य का इतना ध्यान था कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे इन जैसा बनना है, मुझे ये बनना है, जैसा बनना है, बस उसके लिए अपने जीवन को उसमें स्वाहा कर दिया, पवित्र और योगी बनने में, क्योंकि तभी बन सकेंगे वो। फिर ब्रह्मा बाबा को दादी गुलजार ने ये अनुभव कराया कि आपका संपूर्ण स्वरूप वतन में है। गुलजार दादी प्रथम आत्मा थी जिसने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, स्वर्ग का साक्षात्कार तो बहुतों ने किया, श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं ये साक्षात्कार तो बहुतों ने किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार और वो सूक्ष्म वतन में है, ये साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया। हाँ जरूर, क्यों नहीं ताली बजाएंगे। और पहली बार सूक्ष्म वतन का अनुभव किया, उसके पहले किसी ने भी सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं किया था। हाँ, स्वर्ग का करते थे, रंग बिरंगी दुनिया का करते थे, कलरफुल कपड़ों का करते थे, क्योंकि स्वर्ग माना रंग बिरंगी दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया, हीरे जवाहरातों से भरी दुनिया, सोने की दुनिया। तो वहां कोई सफेद कपड़े थोड़ी पहनते होंगे, सब रंग बिरंगे ही पहनते होंगे कपड़े। कभी नहीं देखा लक्ष्मी नारायण को सफेद ड्रेस में, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये तो त्याग की निशानी है, सफेद वस्त्र। परंतु जब गुलजार दादी ने सबसे पहले देखा एक बहुत ही सफेद सफेद दुनिया, सफेद दुनिया और सफेद सफेद प्रकाश, जैसे चांदनी का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, हजारों चंद्रमाओं की चांदनी को मिलाया जाए तो वैसा प्रकाश, बिल्कुल सिल्वरी व्हाइट, और ऐसे प्रकाश में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म स्वरूप, आकारी फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप, और उस लाइट के स्वरूप में ब्रह्मा बाबा इतने शोभनीक लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। जब दादी को कुछ समझ में नहीं आया, ये बाबा का ये स्वरूप मैं कैसे देख रही हूं, कुछ समझ में नहीं आया, और उसने आकर के जैसे वापस आई वतन से घबरा कर कि पता नहीं क्या देखा मैंने, क्योंकि उसके पहले तो बाबा ने कभी मुरली में वर्णन नहीं किया था। तो वापस आई और कईयों से को सुनाया ये अनुभव, तो उन्होंने भी कहा ये भी एक बड़ा विचित्र अनुभव है, बाबा का ऐसा स्वरूप लाइट में और सफेद सफेद दुनिया, ये क्या देखा आपने। तो फिर बाबा, फिर वो ब्रिज इंदिरा दादी के पास गई। ब्रिज इंदिरा दादी ने कहा, अरे ये तो फिर बाबा को जरूर बताओ, बाबा को बताओ कि आपका ऐसा स्वरूप देखा, वो क्या देखा पता नहीं। तो बाबा के पास गई और बाबा को ये सारा अनुभव सुनाया, बाबा ऐसे ऐसे सफेद सफेद था, बिल्कुल चांदनी का प्रकाश था, और उसमें आपका सफेद सफेद लाइट का आकार आपका हमने देखा। तो बाबा को भी उत्सुकता हुई कि वो क्या देखा बाबा, इस बच्ची ने मेरा स्वरूप। तो बाबा ने उसको आश्चर्य से कहा कि बच्ची आपने उनसे पूछा नहीं वो कौन है। तो बाबा ने उनको कहा कि आप फिर जाओ और वो आपको दिखाई दे तो आप उनसे पूछो आप कौन है। अब फिर गई और फिर दिखाई दिया, तो बाबा की श्रीमत थी तो आप पूछो। तो जब गुलजार दादी ने पूछा तो बाबा ने उत्तर दिया कि मैं ब्रह्मा जो साकार में है उनका संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ये ब्रह्मा संपूर्ण बन करके फरिश्ता ब्रह्मा बनेगा, ये बाबा उस फरिश्ता ने बताया। तो उसी वक्त जैसे वो वापस आई और ये आकर वो बाबा को बताया कि बाबा ये उस वो फरिश्ता स्वरूप है और आपका ही वो फरिश्ता स्वरूप है और लाइट का वो स्वरूप है, सूक्ष्म वतन है, सारा वर्णन किया, और आप ही संपूर्ण बन करके ये बनेंगे। तो बाबा को बुद्धि में आया मेरा संपूर्ण स्वरूप है और वो भी एक सूक्ष्म वतन है, तब ये राज सारा खुला। बस उसके बाद तो बाबा की लगन लग गई, मुझे ये संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। पहले तो था श्री कृष्ण बनना है, लेकिन श्री कृष्ण की दुनिया में जाने से पहले ये फरिश्ता स्वरूप बनना है, ये बाबा को पता चल गया। बस मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे लाइट बनना है, अशरीरी बनना है, न्यारा बनना है। बस जैसे बाबा ने वो अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाया, और सचमुच जब भी जैसे बाबा को देखते थे तो बाबा से लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, बाबा के मस्तक से लाइट दिखाई देती थी, और अनुभव होता था कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, हाँ ये अनुभव होता था। दादी गुलजार को तो वतन में अनुभव होता था, वो वतन में जाती थी और देखती थी बाप दादा को बहुत अनुभव किए। पहले ये बाप दादा का पार्ट तो 69 से शुरू हुआ इनके तन में, लेकिन दादी तो पहले से ही वतन में बाप दादा को देखती थी और कैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा चमक रही है लाइट के आकार में। तो कई बार बाबा जब ये पुरुषार्थ में लगे रहते थे तो गुलजार दादी को कहते थे कि अभी जाओ वतन में जाओ और देखो कि वो जो फरिश्ता स्वरूप है उसके कितना नजदीक ये स्वरूप पहुंचाए, ये जो साकारी स्वरूप है ये उस फरिश्ता स्वरूप के कितने नजदीक पहुंचाए। तो वो बताती थी आकर के बाबा धीरे धीरे नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है। तो बाबा को खुशी होती थी मेरा पुरुषार्थ सफल हो रहा है और कैसे मुझे संपूर्ण बनना है, वो फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। साकार मुरलियों में बहुत हम पढ़ते हैं, हाँ बाबा कहते कैसे इनको फरिश्ता ब्रह्मा बनना है, ये फरिश्ता ब्रह्मा बनता है, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता ब्रह्मा बनता है। तो यही बाबा को लगन रहती थी और धीरे धीरे जैसे दादी गुलजार बताती थी उनको कि बाबा नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, बहुत निकट आ रहे हैं। और जैसे आप जानते हैं कि बाबा कितना निकट गए उस फरिश्ता स्वरूप के, ये कैसे 18 जनवरी के रात की शाम कैसे बाबा फरिश्ता बन गए, एक सेकंड का खेल था, अशरीरी हो गए एक सेकंड में, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, जैसे पता भी नहीं चला मक्खन से बाल, क्योंकि संपूर्ण बन गए। 33 वर्षों में संपूर्ण बन गए, 1936 से 1969 तक, 33 इयर्स ओनली। हालांकि बाबा लौकिक में भी ये बहुत अभ्यास करते थे, जो कल बाबा की मुरली चली जिसमें 1932 में बाबा डायरी, बाबा ने जो डायरी लिखी थी वो उस डायरी में बहुत सी बातें हैं कि मन कैसे वजीर है, बुद्धि, ये सभी कैसे उनको कह रहे हैं कि हे मन तुम क्यों नहीं मेरी आज्ञा में चलते हो, क्यों नहीं ये कर रहे हो, मैं तुमको हुक्म कर रहा हूँ तो मेरा हुक्म नहीं मान रहे हो। तो जैसे अपने इंद्रियों को ऑर्डर करते थे, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करते थे और फिर वो कभी कभी मनमानी करते थे, ये बहुत सुंदर बाबा की लिखत है, वो एक डायरी बनी हुई थी। तो कैसे बाबा का अभ्यास तो जैसे पहले से ही था, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये पता नहीं था। गुरुओं के पास तो बहुत जाते थे, गुरु उनको बहुत कुछ कहते थे, लेकिन सदा ही उनके मन में आता ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, आत्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, परमात्मा कौन है ये पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसलिए भक्ति में थे पर खोज थी, सदा खोज थी। इसलिए तो 12 गुरु करने पड़े बाबा को, नहीं तो एक गुरु ही कोई करता है, बस गुरु का मंत्र मिल गया, बस हो गया मेरा तो गुरु है बस। कई लोग आते हैं यहाँ तो बहुत डरते हैं, कहते हैं कि मैंने तो गुरु किया हुआ है, अगर मैं वो छोड़ करके यहाँ आऊँ तो और यहाँ मैं ये सब सीखूँ तो कहीं गुरु का श्राप तो नहीं मिलेगा, यहाँ तक कह देते हैं। हम कहते हैं क्यों मिलेगा गुरु का श्राप, आपको तो सत्य की पहचान मिल गई है, तो उस सत्य के आधार से तो आप तो और ऊँचे चढ़ गए, श्राप क्यों मिलेगा। श्राप तो तब मिले जब कोई पाप कर्म करो, या तो और ही पुण्यात्मा बन रहे हैं, परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचान लिया है, अपने आप को पहचान लिया, आत्म जागृति हो गई है, और ऊंचे हो गए, प्रमोशन हो गई है ये तो। तो अगर प्रमोशन हो जाए तो फिर डिमोशन में जाएंगे क्या? ये तो भगवान का सत्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। और उनको डर लगता है, डर लगता है, सचमुच कईयों से हम मिलते हैं, पर बाबा को ये नहीं था। बाबा तो बहुत तर्क भी करते थे, विवेक चलाते थे, इसलिए 12 गुरु किए, देखा कि इस गुरु से मैं पूछता हूँ तो ये सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो चलो कोई और इनसे ऊंचा गुरु, और इनसे ऊंचा गुरु, और इनसे ऊंचा गुरु, आखिर तो सतगुरु ही मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। यही मिल गया, इसलिए बाबा कैसे अभ्यास जो गुरुओं द्वारा मिलता था वो भी करते ही रहते थे। इसलिए जैसे कि धरनी तैयार थी और शिव बाबा की प्रवेशता हो गई और प्रकाश आ गया, आत्मा की ज्योति जग गई, और कैसे बाबा ने अपने आप पर कितना पुरुषार्थ किया, ऐसे नहीं कि नहीं किया। इसलिए आप साकार मुरलियों में देखते हैं, बाबा की मुरलियों में कई बार आता है, मैं सोचता हूँ मैं भी बाबा की याद में ही भोजन करूंगा और किसी को याद नहीं करूंगा, लेकिन फिर बन चला जाता है। तो जैसे बाबा बड़े ऑनेस्टली मुरलियों में कहते थे ये बात, हम लोग तो कई बार सोचेंगे कैसे कहूँ इतने लोगों के बीच में कि हाँ मेरा मन थोड़ा अभी चंचल है, लोग क्या कहेंगे, पर बाबा ने तो मुरलियों में ये सब बातें आती है। तो बाबा अपनी बड़ी ऑनेस्टी से, बड़ी ईमानदारी से जो अंदर की स्थिति थी वो बताते थे कि कैसे ये भी पुरुषार्थी है, बच्चे पुरुषार्थी है। तो बाबा अपना पुरुषार्थ भी बताते थे, मैं कैसे शिव बाबा से बातें करता हूँ। बहुत मुरलियों में हम सुनते हैं ये ब्रह्मा बाबा का अपना पुरुषार्थ है, शिव बाबा का तो डायरेक्ट ज्ञान है ही है, पर ब्रह्मा बाबा का अपना पुरुषार्थ भी हम देखते हैं। तो कैसे उस पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण को एक बनाया। और अभी बाबा कहते तत्त्वम, जो वरदान विष्णु द्वारा बाबा को मिला, तत्त्वम का वरदान, मैं अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे ही हो। अब ब्रह्मा बाप ने बच्चों को ये तत्त्वम का वरदान दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाप वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। इसलिए ब्रह्मा की हजारों भुजाएं दिखाते हैं, वो कौन है, ये सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम तो दुनिया वालों को भी कहते आप भी ब्रह्मा के बच्चे हो, वो कहते हम कैसे हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है और हम उस आदि पिता के बच्चे हैं। तो आदि पिता के बच्चे हैं तो हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, आप भी हो, लेकिन वो क्यों नहीं समझते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा कार्य करा रहे हैं। अभी भी वही स्वरूप है, अभी भी बाबा हमारे साथ है, बाप दादा हमारे साथ है और वही कार्य कर रहे हैं। तो कई फिर पूछते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे, वो साकार मुरलियां, और अभी शिव बाप और ब्रह्मा की संपूर्ण आत्मा गुजार दादी के तन में आते हैं, तो ये मुरलियों में इतना अंतर क्यों है? तो कैसे नहीं होगा अंतर, होगा ही जरूर, क्योंकि साकार मुरलियों में तो ब्रह्मा बाबा की पुरुषार्थी आत्मा थी, पर अव्यक्त मुरलियों में तो ब्रह्मा बाप संपूर्ण हो गए, तभी वो बातें थोड़ी थे अव्यक्त मुरलियों में आएगी, अभी तो अंतर हो गया, अभी तो दोनों मिल करके डबल इंजन बन करके बच्चों को चढ़ा रहे हैं। हम डबल इंजन हमारे साथ है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना हो तो डबल इंजन चाहिए, आगे भी चाहिए पीछे भी चाहिए, कई बार दो दो आगे होती है। हाँ शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, ऊटी जाते हैं ना, चढ़े होंगे आप लोग, छोटी इंजन होती है लेकिन कितनी इंजन वो पावरफुल, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ले जाना होता है। तो अभी तो हमें एक तो शिव बाप जो है ही सर्वशक्तिवान, वो हमारी इंजन है, और दूसरी तरफ ब्रह्मा बाप जो संपूर्ण है, जिसको देखकर तीनों हमें लोक याद आते हैं, तीनों काल याद आते हैं, तीनों स्वरूप याद आते हैं, जो हमारा अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप और वास्तव में जो ब्रह्मा का स्वरूप है वो हमको याद आता है, हम ही ये थे, हम ही ये बन रहे हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा के आगे लक्ष्य इतना स्पष्ट था, वैसे हमारे सामने भी इतना लक्ष्य स्पष्ट है, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट होगा तो लक्षण भी आएंगे, ये तो होगा नहीं कि लक्ष्य हो और लक्षण न हो, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ही तो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि मानो किसी का लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना है खाली कहता है थोड़ी रहेगा, उस अनुसार उसकी पढ़ाई होगी। और अभी तक MBBS उसने पढ़कर पास भी नहीं किया, लेकिन नशा तो पहले से चढ़ जाता है, मैं तो डॉक्टर हूँ। अभी तक उसको सर्टिफिकेट मिला भी नहीं है, अभी पढ़ ही रहा है, लेकिन पहले ही अपने आप को डॉक्टर कहलाना शुरू कर देता है, क्योंकि लक्ष्य कोई देखता रहता है, मैं ये बन रहा हूँ। पहले से ही तैयारी कर लेता है, कहाँ मैं क्लिनिक खोलूंगा, कहाँ ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो पता नहीं कितना वो अपना बना लेता है, सारा भविष्य पहले से ही सोच लेता है। तो इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, लक्ष्य अगर आंखों के सामने होगा तो लक्षण भी आएंगे। कई बार बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ, हम ये बनने वाले हैं, हमको ऐसे बनना है। उसमें ऐसे नहीं सोचो ये ऐसी ड्रेस पहनूंगा, ये करूंगा, ये गहने पहनूंगा, ये नहीं सोचना। हाँ, ये पहनूंगा, ऐसी बात सोचने की बात नहीं है, लेकिन उनकी संपूर्णता की स्थिति कैसी थी। सर्व गुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म थे, वो हम बन रहे हैं। तो हम अभी कैसे होने चाहिए, सर्व गुण संपन्न कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक मेरे अंदर सभी गुण आए हैं, रोज अपनी चेकिंग करनी होगी। 16 कला संपूर्ण माना पवित्रता की 16 कलाएं, जैसे चंद्रमा 16वें दिन संपूर्ण होता है, 16 कला होता है, 16 आना सच 100%, इतनी मेरी पवित्रता कहाँ तक आई है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश मात्र भी मेरे अंदर न हो। पहले साकार मूल्यों में बाबा कई बार छूट देते थे कि बच्चे कोई बात नहीं, अगर मनसा में तूफान आते हैं कोई बात नहीं, बच्चे कर्मणा में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो सजा मिलेगी, कर्मणा में नहीं आए, मनसा में आता है कोई बात नहीं, बच्चे पुरुषार्थी है। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने देखो साकार मूल्यों में भी फिर से महसूस होता है कि नहीं, साकार मूल्यों में बाबा ने कहा बच्चे मनसा में भी नहीं आना चाहिए, मनसा का भी प्रभाव पड़ता है। अव्यक्त मूल्यों में तो यहाँ तक कह दिया मनसा तो क्या स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वप्न तो हमारे वश में नहीं होते, पर वो संस्कारों का ही तो प्रतिबिंब है। स्वप्न भी जो आते हैं वो ऐसे ही नहीं आते हैं, वो संस्कारों का ही प्रतिबिंब है, कहीं ना कहीं वो संस्कार छिपा हुआ है जो स्वप्न के रूप में आता है। इसीलिए वो भी न हो, यहां तक पवित्रता हो, और फिर अहिंसा परमो धर्म हो। डबल अहिंसक हैं हम, मनसा में भी हिंसा नहीं, किसी के प्रति बुरा सोचना भी नहीं, व्यर्थ भी नहीं सोचना है। कई बार हम कहते हैं कि हम किसी को दुख नहीं देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, दुख नहीं देते हैं, लेकिन दुख ले लेना ये भी हिंसा है, ये अपनी हिंसा कर रहे हैं, दुख ले लेते हैं। चलो हम दुख नहीं देते, क्रोध नहीं करते, किसको बुरा नहीं कहते, हम ये हिंसा नहीं करते, लेकिन किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, उसका दुख ले लिया, ये अपनी आत्मा का घात है। दुख लेना भी तो पाप है, देना पाप है, तो दुख लेना भी नहीं है। इतने तक हमें डबल अहिंसक बनना है। अगर दुख ले लिया, उसके बारे में सोच लिया, तो अपने को ही तो दुख दे रहे हैं, उसने तो बोल के बुरा पूरा कर दिया, वो तो भूल भी जाएगा कि हमने कुछ बोला भी है। कई बार हम देखते हैं किसने कुछ कह दिया और हमको फील हो गया, अब उसने कह दिया उसके बाद उसको भूल भी गया कि उसने कहा भी है, और हम सोचते रहते हैं हमको ये क्यों कहा। फिर एक दिन आप उनसे पूछेंगे आपने मुझे ऐसे क्यों कहा था, अच्छा मुझे तो याद भी नहीं है, तो इतना समय दुख ले पाल के रखा था, अभी वो भी नहीं करना है। हाँ, वो भी नहीं करना है, न लेना है न देना है। एक सेकंड में बात हुई, पूरी हो गई, खत्म। जैसे पानी पर लकीर, जैसे कि हुआ ही नहीं है। अब इतने हद तक हमें डबल अहिंसक बनना है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सुबह से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई है, हर मुरली में कोई न कोई बाबा मर्यादा बताते हैं, नियम बताते हैं, धारणा बताते हैं। ये देखते रहना है, चेकिंग करनी, उस अनुसार मैंने कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक मैं हूँ। ये है सूक्ष्म चेकिंग और फिर चेंज, जिसको बाबा कहते हैं चेकिंग किया पर चेंज नहीं किया तो फायदा क्या। भाई ये चेकिंग हुई कि हाँ इतने हद तक नहीं है, तो उसी वक्त चेंज कर देना। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान से मांगते थे, भगवान तो इतनी शक्ति दे, ये शक्ति देना मुझे, मन का विश्वास कमजोर होना उसकी शक्ति दो। अब मन का विश्वास तो है, वो शक्ति तो है, वो भी वो नहीं हम भगवान से मांगेंगे। मांगने की तो कोई बात ही नहीं है, वो है। बाबा की हर मुरली से वो शक्ति मिलती है, संग से शक्ति मिलती है, वातावरण से शक्ति मिलती है। लेकिन हमें अब क्या करना होगा, अपने अंदर में वो शक्ति अनुभव करने के लिए चेंज करना, ये दृढ़ता चाहिए, ये शक्ति की अनुभूति चाहिए, दृढ़ता चाहिए। जो बाबा ने कल भी कहा कि बच्चे कहते तो हैं कि है हम, लेकिन क्या सदा है? ये सदा माना दृढ़ता। अगर सदा नहीं माना, दृढ़ता नहीं है। और अगर दृढ़ता नहीं है, सदा नहीं है, तो फिर लड़खड़ाते रहेंगे, आज थोड़ा अच्छा, कल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसीलिए वो एक गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो बाबा कहते नहीं, ये गलत है गीत, गिरना थोड़ी है, अभी तो चढ़ना ही है ना, कि गिरना भी है, क्योंकि अभी गिरेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। मान लीजिए अभी अगर गिरे तो कहाँ पहुंचेंगे। हाँ, जैसे कोई 99 के वो होता है ना, ये स्नेक एंड लैडर से खेल आता है, सांप और सीढ़ी, और अभी 98 तक पहुंच गए या 97 तक पहुंच गए, और फिर 99 आ गए और वहाँ एक सांप खड़ा है, और वो 99 पर सांप खड़ा है तो कहाँ ले जाएगा, सीधा 2 नंबर पर ले जाएगा। कहाँ 2 से चढ़ के 99 तक पहुंचे, और कहाँ उस सांप ने डस दिया और सीधा नीचे आए। तो वो भी कईयों की स्थिति होती है, कि होती है, जरूर होती है। फिर बाबा को कहते, बाबा हमने काला मुंह कर दिया, ऐसे बाबा को कहते। बाबा भी सब मुरलियों में बता देते कि बच्चे ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बाबा ने तो सबको कैसे पता चले कि क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है, तो बाबा मुरली में सब बता देते। किसको डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुरली में सब बता देते थे। बाबा को पत्र लिखते थे, अपने अनुभव लिखते थे, सब समाचार लिखते थे, तो वो बाबा मुरली में सुना देते थे, ताकि सब तरफ ये समाचार पहुंचे, कैसे परिवर्तन करना है, क्या करना है, ये सब साकार मुरलियों में हम सुनते हैं। लेकिन उस सांप और सीढ़ी के चित्र में एक सीढ़ी भी है, वो 3 और 4 से शुरू होती है। हाँ, वहां पर सीढ़ी में पर आ गए, सीधा 97 पर पहुंच जाओ। हाँ, सीधा बीच से जाने की जरूरत ही नहीं है, वो भी है, जिसको बाबा कहते लास्ट सो फास्ट। कई नहीं कहते, हम तो बहुत लेट आए। जो पुराने हैं वो तो बहुत आगे गए होंगे, क्योंकि वो बहुत समय से खेल रहे हैं, हम तो इतना लेट आए। लेकिन वो सीढ़ी भी है जो 3 से 98 तक ले जाएगी, वो भी है, वो आप उस तक पहुंचाओ तो आप सीधा ऊपर चले जाओगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी तक किसी को कुर्सी मिली ही नहीं है, 100 तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है, तो 3 से 97 तक जा सकते हो और 98 से 2 तक 2 तक आ सकते हो, ये भी है, दोनों है। क्योंकि सीढ़ी किसी को भी कुर्सी मिली नहीं है। तो जैसे वो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं ना, वो खेल ऐसा है जिसमें सब कुर्सियां खाली पड़ी है, खाली दौड़ रहे हैं, वो म्यूजिक कभी रुका नहीं है, ऐसा खेल है ये। और जैसे म्यूजिक रुकेगा वो अचानक होगा, और अचानक होगा तो जो सावधान नहीं होंगे उनकी तो कुर्सी चुप जाएगी, दूसरा ले लेगा, ऐसे है ना। तो हम तो उस कैटेगरी में नहीं हो ना, भले लेट आए, लेट वालों को बाबा वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट जा सकते हैं। हाँ, जो पुराने हैं उनको फिर अलग वरदान है, क्योंकि पुरानों ने बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है, ऐसे ही नहीं इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचे, ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुंचे जो महारथी कहलाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और वो संघर्ष करते 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 ऊंचे बने हैं, और इसलिए ऊंचे इसलिए बने क्योंकि संघर्ष में उनके अंदर निखरता आती गई, वो निखार आ गया, और बाबा उनको फिर सुंदर वरदान देते हैं जो पुराने बनते हैं भले इतने सालों के, लेकिन इतना आगे हैं जो बाप समान की तैयारी है, फिर बाबा उनको क्या वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, वो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नयों के लिए, और पुरानों के लिए क्या वरदान है, ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। वो मोल्ड हुए हैं, न जाने कितनी आग से वो पार हुए हैं अपने जीवन में, वो आग से पार हुए हैं, कितनी ऊंचाइयों से वो आगे बढ़े हैं, कितने विघ्न उन्हों के सामने आए होंगे, वो सब पार किए हैं, लेकिन बेदाग निकले हैं, शुरू से अंत तक बेदाग निकले हैं, इसलिए ऊंचे होते ही गए। ऐसे नहीं कि 98 तक आके फिर सांप ने काट लिया और 2 तक पहुंच गए, ऐसे नहीं हुए। तो वो तो पहुंच जाएंगे, नंबर लेंगे, लेकिन लास्ट वाले भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए कई अगर नए कहते हैं कि बाबा हम लेट क्यों आए, बाबा कहते अच्छा है लेट आए, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, मक्खन मिल रहा है सब, शुरू वालों ने तो बहुत मेहनत की है, हमारी दादियों ने कितनी मेहनत की होगी, ऐसे ही थोड़ी सेवाएं हुई है। दादी जानकी बताती है कि इतना बेगरी पाठ का जो समय था, हमको 2 आने नहीं थे, वही जाना है, पूना जाना है, बाबा ने हमको 3 रुपया दिया, बच्ची 3 रुपया लो, अब 3 रुपये में पूना जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कौन सी रिक्शा करूंगी, कौन सी ट्रेन लूंगी, पता नहीं, बस बाबा ने कहा है जाना है, 3 रुपया लेकर के गए। तो क्या है कि कैसे बाबा की उनको मदद मिली, मिलती गई, क्योंकि अंदर में लक्ष्य पक्का था, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है, और उसके अनुसार कैसे यज्ञ का विस्तार किया, कितने विघ्न आए। दिल्ली के जो पुराने भाई बहन है वो बताते हैं, शुरू में कितने विघ्न आए हमको, ये जादू करती है, ये करती है, वो करती है, घर पिटाती है, भाई बहन बनाती, भले अभी भी कहते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी साकार में मुरली में कहा है कि जब तुम्हारी वृद्धि होगी ना तो लोगों की आंखें खुलेगी, वृद्धि होगी, अभी वो भी वृद्धि हो गई, दिल्ली में क्या नहीं किया, हाँ ये वो कहाँ जो इंडिया गेट के पास इतने हजारों भाई बहन इकट्ठे हुए, ये क्या दिखाने के लिए कि हमारी भी शक्ति है, आप हमको कम नहीं समझो, है। इसलिए जब तुम्हारी वृद्धि होगी तब लोगों की आंखें खुलेगी, भाई जा देखे तो सही, ये क्या है, लोग क्या क्या कहते हैं, फिर जब यहाँ आकर देखते हैं, अरे ये तो इतनी ऊंची ऊंची बातें देते हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आते हैं। फिर कहते अगर हम पहले आते होते तो कितना अच्छा होता। फिर भी बाबा कहते कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी कह करके अपने आप को संतुष्ट तो क्या करना है, लेकिन आगे बढ़ना है, यहाँ से भी आगे बढ़ना है, अभी सीट किसी को मिली नहीं है। तो परंतु लक्ष्य अनुसार लक्षण, लक्ष्य मेरा बहुत ऊंचा है और लक्षण मेरे कुछ भी नहीं है तो लक्ष्य पर कैसे पहुंचूंगा। पर निराश भी नहीं होना है क्योंकि बाबा कहते हैं मैं साथ हूं। निराशा तब आती है जब हम समझते अकेले हैं, अकेले है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे से तो होगा नहीं। लेकिन बाबा कहते अकेले नहीं हो, कोई भी साथ ना हो, बाबा साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ोगे पर वो नहीं छोड़ेगा, बस ये समझ लो, ये समझ लो, इतना निश्चय पक्का हो। दुनिया आपको छोड़ देगी, जो साथी कहलाने वाले वो छोड़ देंगे, क्योंकि कहाँ तक इंसान साथ निभा सकता है, कहाँ अंत तक तो नहीं निभा सकता है, बीच बीच में सब छूटते जाएंगे आधार। तो उस हिसाब से निराधार रहना है, जिसको बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, निराधार रहना है और आधारों से, क्योंकि अंत में केवल एक ही आधार काम आता है, बस और कोई काम नहीं आता है, और कोई काम नहीं आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का इसमें अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम हर समय एवर रेडी रह सकेंगे, क्योंकि पता है कि अचानक होना है, तो अचानक होना है ये पता है, तो हर वक्त एवर रेडी रहना है, और हर वक्त एवर रेडी रहना है उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और उसके लिए हर समय यही सोचना है कि मेरा एक ही आधार है, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही हिम्मत का, हाँ बाबा कहते हैं हाथ हो तो बाबा की मदद का साथ है ही है। पर हिम्मत कभी नहीं हारना, कुछ भी हो जाए, हिम्मत अगर एक बार भी हार गए फिर मदद कहाँ मिलेगी, फिर सब जगह और सहारे ढूंढेंगे, क्योंकि वो लगता है कि हाँ ये ज्यादा सहारे हैं, बाबा के साथ का सहारा अनुभव नहीं होगा। लेकिन हिम्मत हारी तो ये अनुभव होगा कि ये सहारे बन सकते हैं, पर हिम्मत नहीं हारी तो बाबा की एक तो क्या सौ गुना तो क्या पदम गुना मदद मिलेगी। पर अपनी हिम्मत को कम नहीं करना है, ये जरूर अपने अंदर धारणा बना के रखनी है। तो चढ़ती कला तो क्या कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं उड़ती कला हो, उड़ना है, आजकल उड़ने का जमाना है। कहाँ तक पहले जमाने में चलते थे, पैदल चलते थे तो टांगों को बहुत काम करना पड़ता था, गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो चक्र का आविष्कार हुआ। जब ये आविष्कार कुछ नहीं हुए थे विज्ञान के, तो लोग तो चलते ही थे, कहाँ था साधन जाने का, कहीं चलना ही पड़ता था। ये दो टांगे काम करती थी, 11 नंबर बस वही काम करती थी। लेकिन फिर लोगों ने देखा भाई ये तो बहुत चलना पड़ता है, कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, कैसे जाएंगे, तो फिर व्हील का आविष्कार हुआ, चरखे का या चक्र का आविष्कार हुआ। पर चक्र को कहाँ यूज करेंगे, तो एक लकड़ी का वो बना दिया और बैल आगे रख दिया, भैंसा आगे रख दिया, ऊंट आगे रख दिया, तो ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी। पंजाब में हम देखते हैं बहुत भैंसे गाड़ियां थी पहले, पता नहीं अब ये है या नहीं है, हमने कई पंजाब में ही देखे भैंसा गाड़ी, और जगह भैंसा गाड़ी नहीं देखा। पर वो अभी भी है या नहीं है, पंजाब में है अभी भी है। अच्छा हा? तो वो गाड़ी मिल गई और साथ में जानवर का की मदद मिल गई, चलो हम बैठे और आराम से चले। पर फिर देखा, अरे ये तो बहुत टाइम लगता है, वो तो फिर भी टाइम लगता है बेचारा, जानवर कहाँ तक चलेगा, हम तो मौज कर रहे हैं जानवर को चला रहे हैं। फिर देखा इनसे और कुछ आगे हो तो फिर और चलो, मोटर गाड़ियां आई, पेट्रोल डाला, थोड़ा चले और आगे चले। पर फिर अभी इतना फिर भी टाइम लगता है तो और आगे बढ़े तो हवाई जहाज आ गए, रॉकेट आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया। फिर देखा चलो टांगों को तो मदद मिल गई पर हाथों को बहुत काम करना पड़ता है, तो मशीनें आ गई, मशीन आपका काम करेगी, आपके हाथ भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस मशीनें सब कुछ कर रही है, सब सहज हो गया। फिर देखा कि मशीनें चलो हाथ का काम कर रही है पर दिमाग तो बहुत चल रहा है, इतना दिमाग इतना याद करना बड़ा मुश्किल है, तो कंप्यूटर आ गए, सब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, कंप्यूटर आपकी सब मेमोरी आपकी रख देगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। क्या उल्टा असर हो गया? कि लोगों ने चलना ही बंद कर दिया तो बीमारियां आ गई, हाथों से काम करना ही बंद कर दिया तो ये दर्द वो दर्द वो दर्द करने लग गए, दिमाग से काम करना बंद कर दिया तो व्यर्थ संकल्प चलने लगे, तो और ही उल्टा हो गया। अभी कहते नहीं, चलो जॉगिंग करो, पैदल करो, हाथ से करो, वो चक्की पीसना सब बंद हो गया, मशीनें आ गई, अभी कहते फिर से करो, फिर से अपना दिमाग लड़ाओ, कि इन्होंने तो सुस्त बना दिया, बीमारियां आ गई, क्योंकि शरीर को तो काम चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं ये अंतर की चढ़ती कला और उड़ती कला चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर की है तो क्या बड़ी बात है, अमेरिका पहुंचने में 15-16 घंटे में पहुंच सकते हैं हवाई जहाज के द्वारा यहां से, क्या बड़ी बात है। लेकिन मन के विमान से तो एक सेकंड में पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो? मन के विमान से तो एक सेकंड में परमधाम पहुंच सकते हो। अब वो पुरुषार्थ कहाँ तक हमारा चल रहा है वो देखना है, उसको कहते उड़ती कला। उड़ती कला में लेट गो, हाँ लेट गो, पंछी कितना ऊंचा उड़ता है क्योंकि वो हल्का है, वो सब धरती के जो आकर्षण है उनको उनके पार चला जाता है, आकर्षण से परे। तो बाबा भी कहते हैं इस धरती के जो आकर्षण है, ये क्यों क्या कैसे, ये छोटी छोटी संसार की बातें, इनमें मत मन को उलझाओ, इनमें मत फंसो, ये और हिसाब किताब मत बनाओ, क्योंकि अभी जाना है, अभी जाना है, अभी उड़ना है, अभी जाना है, और लाइट होकर के जाना है, हेवी बोझ उठा करके नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल लाइट। इसलिए वो लक्षण हमारे साथ होंगे तभी तो उस लक्ष्य को पा सकेंगे। सब बेड़ियां तोड़ते जाएं, बंधन तोड़ते जाएं, आत्मा स्वतंत्र बन जाए। दुनिया में भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ गलत ले लिया है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या ले लिया है? स्वतंत्र हूं ना मैं, जो चाहूं सो करूं, लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, मारपीट करूं, हत्या करूं, हिंसा करूं, चोरी करूं, जो चाहूं सो करूं, मैं तो फ्री हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके विरुद्ध जो चाहिए बोलूं, कौन मुझे रोक सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम है, सब फ्रीडम है। ये फ्रीडम नहीं, ये कोई फ्रीडम नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। बड़ा अंतर है दोनों शब्दों में, मैं जो चाहूं सो करूं। पर स्वतंत्रता माना अंदर के बंधनों से परे, आत्मा न्यारी और प्यारी, मुक्त और जीवन मुक्त, ये हमें बनना है, कहीं भी फंसना नहीं है, कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता है जो मन को अपनी ओर खींचे, एक सेकंड में न्यारे बन जाऊं, ये है सच्ची स्वतंत्रता। और उसके आधार से हम उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा है ना, हाँ अवश्य पहुंचेंगे, यही आगे हिम्मत रख करके आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।